मुल्क में और दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। साथ ही ये बात की जा रही है कि इस बीमारी का ताल्लुक हमारे गुनाहों से है। इसे अल्लाह का अजाब और हमारे अहमाल की सजा करार दिया जा रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, क्या बाकी ऐसी वजूहत होती हैं? मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गामदी साहब, ये आमतौर पर होता है, जलजला आए, सैलाब आए, कोई दूसरी आफात आए, कोरोना वायरस आ गया है, ये कह दिया जाता है कि जी ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह ताला इस वक्त ये पैगाम दे रहा है क्योंकि हम गुनाह बहुत कर रहे हैं, इसलिए इस किस्म की वबाएँ आ रही हैं, तारीखी तौर पर वबाएँ आती रही हैं, क्या ये दुरुस्त बात है?
ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब का कानून है वो कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुआ है कि जब वो किसी गिरोह को, किसी कौम को या अफराद के किसी मजमूए को सजा देते हैं तो उससे पहले हक को पूरी तरह वाजह कर देने के लिए पैगंबर भेजते हैं। चुनाचे कुरान में ये बयान किया गया है कि मा कुन्ना मुअज्जबीन हत्ता नबअथा रसूला, जब तक हम किसी कौम में अपना रसूल नहीं भेज देते उस वक्त तक अजाब नहीं नाजिल करते। अजाब के लिए जरूरी है कि पहले नेकोकारों को बदकारों से, मानने वालों को न मानने वालों से, अच्छा रवैया इख्तियार करने वालों को बुरा रवैया इख्तियार करने वालों से अलग किया जाए। ये अजाब का कानून कुरान मजीद में बयान हुआ है। तूफान आते हैं, आफतें आती हैं, जलजले आते हैं, ये अल्लाह का कानून है, यानी उसने दुनिया के निजाम में ये गुंजाइश रखी है कि यहाँ मौत वारद होती है। ये कारखाना बनाया ही असल में जिंदगी और मौत के कारखाने की हैसियत से है, तो यहाँ तो हर वक्त मौत आ रही है। अगर आप देखें तो एक बड़े शहर में आम हालात में हर दिन 10, 20, 50, 100, 1000 जनाजे उठते हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। जब कोई बीमारी फैल जाती है, आफत आ जाती है, वबा आ जाती है, तो मौत गोया बिल्कुल नुमायाँ होकर हमारे सामने सूरज की तरह उफक पर नमूदार हो जाती है। तो अल्लाह ताला का ये कानून है जो इस दुनिया में चल रहा है, इसमें इंसान को ये महमेज भी होती है कि वो आफतों का मुकाबला करे, उसके लिए इजादात करे, दवाएँ ईजाद करे, तशखीस के तरीके देखे। आखिर हम सब बीमारियों का शिकार होते हैं, तकलीफों का शिकार होते हैं, तो इसके लिए तिब का एक पूरा इल्म इंसान ने वजूद पजीर किया है और हमेशा से किया है। तो ये अल्लाह का अमूमी कानून है जो चल रहा है, इससे ये तो ज़रूर मकसूद होता है कि इंसान ज़रा बेदार हो, गफलत से उठे और हकायक पर गौर करे, लेकिन अजाब का कोई तसव्वुर नहीं करना चाहिए। अजाब का एक बिल्कुल अलग कानून है और वो कुरान में बड़ी वजाहत से बयान किया गया।
साहब, साथ में भी बताएगा कि इस किस्म की बातों को ख्वातीन से, ख्वातीन के लिबास से जोड़ दिया जाता है और ये काम करते मर्द हैं, हालांकि तारीखी तौर पर देखा जाए तो दुनिया में वबाएं आईं और इतनी हद तक अमवात हुई कि 20 से 25% आबादी दुनिया की वाइप आउट हो गई थी। अगर 100 साल पहले का फ्लू देखा जाए, स्पेनिश फ्लू, तो उससे तकरीबन 5 करोड़ लोग मर गए, इस खत्े में 2.25 करोड़ लोग मर गए। ना तो उस वक्त इस खत्े में टेलीविज़न था, ना दुनिया में टेलीविज़न था, उसके बावजूद मर गए। वैक्सीन आई, नहीं मरते। 50 साल पहले तक खसरे से सालाना तकरीबन 30 लाख लोग मर जाया करते थे, वैक्सीन आ गई, नहीं मरते। तो दुनिया भर में जो अगर हम देखें तो वैक्सीन आने के बाद, साइंस की तरक्की के बाद जो वबाएँ हैं उनसे अमवात कम हुई हैं, फिर भी कहा जाता है कि जी ये बेरा रवि और इस सबकी वजह से हो रहा है और ये मर्द करते हैं और औरत पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं, किस हद तक दुरुस्त है? और ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये इस वजह से हो रहा है और बेरा रवि की वजह से हो रहा है तो तबलीगी जमात के लोग क्यों मुतासिर हुए, ईरान से आने वाले ज़ायरीन क्यों मुतासिर हुए, दुनिया भर में जो मजहबी इबादत की जगह हैं वो क्यों बंद हो गई हैं इसकी वजह से कि वहाँ से कहीं ये वायरस ना फैल जाए? क्या वाकई मर्द बैठ कर ख्वातीन पर, उनके लिबास पर या इन जनरल टेलीविज़न पर, बेरा रवि पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं?
ये मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस तरह की वबाएं और इस तरह के जलजले और इस तरह के तूफान और इस तरह के सुनामी ना किसी अच्छे को देखते हैं, ना बुरे को देखते हैं, ना हरबैन को देखते हैं, ना मस्जिद को देखते हैं। ये अल्लाह का जो कानून कायनात में चल रहा है उसके तहत आते हैं। रह गई ये बात कि हमारे अंदर क्या गुनाह है, क्या खताएं हैं, तो कभी हमने इस बात पर गौर किया कि हम मिलावट करते हैं, धोखे देते हैं, फरेब देते हैं, हम गबन करते हैं, हम दूसरों का तमस्कर उड़ाते हैं, हम गीबत करते हैं, हम बदजनी करते हैं, हम आला दर्जे के लीडर और आलिम और सहाफ़ी और दानश्वर होने के बावजूद अपने फन से, अपने इल्म से بدنیتی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. میری کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم برائیوں پر توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو ساری توجہ کا مرکز خواتین کا لباس کیوں بن جاتا ہے. یہ تو کبیرہ گناہ ہے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. یعنی یہ سب وہ ہیں کہ جو آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہماری قوم میں کس حد تک کیے جاتے ہیں. ہم تو یہ امید نہیں کر سکتے کہ کوئی دعا خریدیں گے تو وہ ہمیں خالص مل جائے گی. تو یہ سب جرائم, یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے. لیکن مذہبی طبقے کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اس کو کسی جرم کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلی نگاہ خواتین پر پڑتی.
بھائی صاحب ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ اب ایک اور بحث ہے. ظاہر ہے دنیا بھر میں مساجد بند ہیں, دوسری عبادات کی جگہیں بند ہیں. مکہ میں, مدینہ میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عام عوام کے لیے نہیں ہو رہا ہے. عمرہ بند ہے, حج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, وہاں تراویح نہیں ہو رہی. مگر پاکستان میں کہا گیا کہ یہ دعا کا وقت ہے, رمضان ہے, تراویحوں کے حوالے سے SOPs جاری ہوئے, نماز کے حوالے سے SOPs جاری ہوئے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے, ہم پر چھوڑا جائے, نہ کہ مذہبی اسکالرس پر اور علماء پر چھوڑا جائے. یہ اصل میں کیا ہے, ایک مذہبی معاملہ ہے, میڈیکل معاملہ ہے؟ ڈاکٹرز کی سنیں, علماء کی سنیں؟
اس طرح کے ہر موقع کے اوپر آخری اور حتمی رائے طبی ماہرین کی ہوتی ہے. یہی مذہب کا بھی حکم ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا تدبیر کرنی ہے, کیا احتیاط کرنی ہے, کیا رویہ اختیار کرنا ہے. مجھ پر بھی لازم ہے, آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. جب وہ حتمی طور پر کوئی بات کہہ دیں تو اس کی خلاف ورزی جائز نہیں رہتی. میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ اس وقت جو شخص خلاف ورزی کرتا ہے وہ اگر اپنے لیے خطرے کا سامان کرتا ہے تو اقدام خودکشی کر رہا ہے, اور دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے تو اقدام قتل ہے. تو اس وجہ سے اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کو یاد کرنا وہ ہر وقت ممکن ہے, ہر جگہ ممکن ہے. تو خلوت میں بیٹھیے, آپ تنہائی میں مصلی بچھائیے, اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیے. یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم مسلمانوں کو دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور دعا بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ طبی ماہرین کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بنیں گے تو ایک جرم کا ارتکاب کریں گے.
بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.